नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 62 क्रम के अनुसार यस्मिन् सत्कर्म पीयूषे यशस्ति स्वरे सकृता श्रुतांजलि उत्सृज्य सुनते कर्म वाचना यस्मिन् सत्कर्म पीयूषे यशस्वीरे सकृत श्रोतांजलिम् उपसृज्य धुनुते कर्म वाचना यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यस्ति सर्वे वरे सत्कृत श्रोतांजलि उपसृश्य धुनुते कर्म वासना यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यस्तिरस्तरे सकृत श्रोतांजलि स्पर्श धुनुते कर्म वासना
यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे
यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे धुनुते कर्म वासना
जी।
यस्मिन् धरापर कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप के इतिहास में सब कर्ण पीयूषे जो दिव्य एवं शुद्ध कानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यश तीर्थ भरे भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करने के पवित्र स्थानों में रखते हुए सप्रीता एक बार भी तुरंत श्रोतम अंजलि दिव्य संदेश का श्रवण करते हुए उपस्पर्श स्पर्श करके विधुनते नष्ट कर देता है कर्म वासना। सकाम कर्मों के लिए प्रबल इच्छाओं को अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की व्यवस्था से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, जब भक्तगण भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करता है तो उन्हें तुरंत ही यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकतावादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते। इस तरह उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। लगभग हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिकतावादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रक्रिया बढ़ती जाती है। किंतु भक्त मात्र भगवद गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं का स्वाद लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकतावादी कार्यकलापों में के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावनामृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकतावादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। यहाँ पर श्रोतांजलि स्पर्श शब्द बताते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक कार्यकलापों का दूषण व्याप्तता नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। आत्मा के लिए भौतिकतावादी कार्यकलाप व्यर्थ है, अतएव भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाता है। भक्तगण मुक्ति में स्थित रहते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतएव उन्हें उनके भौतिक धर्म तथा कार्यों में फिर से नहीं बुलाया जा सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानन्दनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुजं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशालं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये मत्कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा स्थापित इस भागवतीय सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है भागवत सुनने का, जो अमूल्य है, जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसा जो हमें अवसर दिया है प्रभुपाद ने, वो असीम कृपा है इस जीवों पर प्रभुपाद की। तो उस कर्म के अनुसार हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, जो नौवां स्कंध, जो भगवान के वंश परम का वर्णन हो रहा है, स्वम वंश का। सुखदेव महाराज वर्णन करते करते हुए इस परंपरा का, इस श्लोक में भगवान का यश का, और इस यश की कथा सुनने से व्यक्ति और जीव का क्या प्रभाव पड़ता है उस कथा से, उसका वर्णन परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जो इस भगवान के यश का कथा कोई सुनता है तो उनके कर्म की वासना दोनों से पूर्ण रूप से धो जाता है। ऐसी भगवान कथा आगे दसवें स्कंध में आएगी, इसका ट्रायल बता रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इस साक्षात धरे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण साक्षात इस स्वम मंच में जन्म अवतार धारण करेंगे, तो उनकी कथा सुखदेव गोस्वामी अभी सुनाने जा रहे हैं। दसवां स्कंध प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय 24 नंबर के अध्याय का 5 श्लोक बाकी है, 67 श्लोक है इस अध्याय में, और ये 62 है। इसके बाद फिर दसवां स्कंध शुरू होगा, और भगवान कृष्ण की जो अद्भुत कर्म है, उनके अद्भुत लीला है, उनके अद्भुत रूप है, उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करेंगे परीक्षित महाराज के सामने। तो इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिकतावादी लोग हैं, उनका आसक्ति भौतिकता के कार्यकलापों में रहता है, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए की इच्छा है। अनेक जन्मों से वो इंद्रिय भोग कर रहे हैं, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी उसी में ही वो लगा रहता है। जो इस भगवत गीता और भागवत का संदेश नहीं सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन उसी में ही लिप्त रहता है, भौतिकता के जो भौतिक जीवन में क्या सुख है, उस सुख को अनुभव करने के लिए अपनी इंद्रिय उसी में लगाते हैं। लेकिन जो भगवान का यश और कीर्तन कोई व्यक्ति सुनता है, तो उनका धुनोति पूर्ण रूप से कर्म वासना धो जाता है। तो कर्म वासना धोने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। और कृष्ण की कथा जो भगवान का गुण रूप है, इनका कई अवसर है, प्राप्त है, और कई अर्थ भी होता है, और कई इसमें भावार्थ भी निकलते हैं। तो भगवान कृष्ण की कथा का गुणगान करने से क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में स्वयं नारद मुनि प्रथम स्कंद में कहते हैं श्री व्यासदेव को। व्यासदेव ने जब इस अनेक पुराण और इतिहास की रचना की, काम और मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो उसमें बताया उपदेश, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि उसमें वास्तविक जीव का कल्याण नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का व्यक्ति उसी में तो लगा है, पहले धर्म थोड़ा बहुत धर्म करते हैं, फिर उसी धर्म से कुछ प्राप्त होता है तो फिर काम की इच्छा करता है, और काम की इच्छा पूर्ति करने के लिए करके फिर बाद में मोक्ष का प्राय कोई इच्छा नहीं करता है, तो उससे जीव का कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तब नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर आपको जीव को कल्याण के लिए कुछ उपाय करना है तो इस पांचवें अध्याय में नारद मुनि कहते हैं, न यत वत् चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर हित यद वायसम तीर्थम उष्यंति मानता न यत्र हंता निरम निर्मंसंति उपशिक्षया। जो भगवान हरि है उनके पद कमलों की जो यश की गाथा आपने नहीं कही, उस गाथा सुनने से जीव का मंगल होता है। भगवान का यश की कथा सुनने से जीव का मंगल होगा, और इस कथा रूपी शब्द से जो इस पूरे जगत का पूरे जगत को पवित्र करने वाला इस कथा से है, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा और कीर्तन नहीं सुनेगा तब तक उनके कर्म वासना समाप्त नहीं होगी, और उनके साथ साथ कथा का जो भागवत का कथा है उनके द्वारा जो सब भगवान व्यासदेव ने जो रचित ये श्रीमद् भागवत की कथा का शब्द का ध्वनि इस जगत में फैलता है तो ये पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। जीव का तो मंगल होता ही है इस कथा सुनने से, लेकिन पूरा जगत में उस शब्द की ध्वनि से पूरे जगत का वातावरण भी पवित्र होता है, और अन्य अन्य जो मनुष्य ध्वनि में है उनके साथ साथ अन्य अन्य जीव का भी उसमें कल्याण होता है। तो इस कल्याण करने के लिए वास्तव जीव को आप भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन कीजिए, और जो इसी तरह जो भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन नहीं होता है और दूसरे दूसरे अन्य अन्य ग्रंथ है, अन्य अन्य साहित्य है, उस साहित्य पढ़ के लोग क्या समझेंगे और क्या कहेंगे उनको। तो नारद मुनि कहते हैं वायसम वो कौवा का तीर्थ स्थान है, जहाँ कौवा जहाँ जूठा होता है, जहाँ गंदगी होती है, वहीं पर कौवा जाकर बैठता है। इसी तरह इस भौतिक जगत में अनेक साहित्य है, अनेक कथाओं है, लेकिन जब तक भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनेंगे तब तक वो कौवे के स्थान के समान है। तो इस भगवान कृष्ण की कथा सुनने जो मानसा है, जो मनसा है, जो मुनि है, उस भगवान की कथा सुनकर आनंद अनुभव करेंगे उसमें, और उनका जीवन सफल और मंगलमय बनाएंगे। और उनके आगे फिर कहते हैं श्री नारद मुनि, तत्वाद विसर्ग जनता अद विप्लव यस्मिन यत् प्रतिश्लोकम आबुद्धिवत अपि नामानि अनंत से यशो अकीर्तनानि यत् सुनवंती गायंती गुणंती साधव। तत्वाक विसर्ग जनता अद विप्लव, इस कथा से क्या होगा? नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को, जब तक आप भगवान कृष्ण की कथा नहीं लगते हैं तब तक आप जीव का मंगल नहीं होगा। अगर आपने इस भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से यश कीर्तन का वर्णन किया तो इस वर्णन से जगत में विप्लव फैल जाएगा। विप्लव मतलब क्रांति फैल जाएगी। भगवान कृष्ण की कथा कीर्तन से ही क्रांति फैलती है। वास्तव में हम प्रयास करते हैं कहीं कहीं राजनेताओं भी क्रांति लाने के लिए, लेकिन वो क्रांति नहीं आती है उसमें, आती है तो क्या थोड़ा समय के लिए, फिर बाद में जिसका जो स्वभाव है मनुष्य का वही स्वभाव में लिप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तव क्रांति लाने के लिए, विप्लव फैलाने के लिए नारद मुनि उपाय बताते हैं कि जब तक कृष्ण का यश कीर्तन नहीं होगा तब तक विप्लव नहीं आएगा, जगत में क्रांति नहीं आएगी। इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं प्रथम स्कंद में पांचवें अध्याय में कि भौतिकतावादी लोगों का वैसे वैसे देखा जाए तो उनका पूर्ण रूप से जीवन विषय में लगा है, कितना भी प्रयास करें अन्य मार्गों से उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब तक भगवान कृष्ण का यश और कीर्तन नहीं सुनेगा तब तक उनके जीवन में भी क्रांति नहीं आएगी और देश में और कहीं भी पूरे विश्व में क्रांति नहीं आएगी। तो इस विप्लव को लाने के लिए भगवान कृष्ण का यश करना चाहिए, श्री नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की कथा का क्या प्रभाव है इस श्लोक में बताते हैं और इस श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में बहुत महिमा बताई है श्रवण कीर्तन की। तो उसी में बताते हैं कि सुनमताम स्व कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थ भद्राणी विधनोति सुहस्तताम। उस श्लोक में भी आया है विधनोति, विशेष रूप से धुलाई कर दिया जो हमारे हृदय में अनेक जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य ऐसा सदरिपु है, अनेक जन्मों से हमारे साथ चल रहा है, उनको धोने के लिए एकमात्र है भगवान कृष्ण की कथा। पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण, श्रवण कीर्तन भगवान कृष्ण का, अन्य किसी का नहीं। भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन करने से ही हमारे हृदय में जो अभद्र है अमंगल है, हमारे जीव का जो आत्मा का अकल्याण करने वाला है, इस ग्रंथि को नष्ट करने वाला या छेदन करने वाला कोई है वस्तु है विधनोति तो स्वयं सताम भगवान कृष्ण की कथा है। तो भगवान कृष्ण की कथा ही जीव का मंगल और हृदय का जो अभद्र है अमंगल है वो दुर्भित हो सकता है। इनके अलावा अगर हम कोई प्रयास कितना भी प्रयास करें तो असंभव नहीं है। तो कथा सुनने से फिर साथ साथ में हमारा क्या होता है कि कथा जब तक हम जब सुनेंगे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवतम और शुद्ध भक्त से तो हमारे हृदय में तो जो अभद्र है वो नष्ट होगा, साथ साथ में भगवान कृष्ण में उनकी लीला में उनके रूप में हमारा मन चित लग जाएगा। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक उनके रूप और गुण में हमारा चित नहीं लगेगा। तो कथा सुनने से ही हमारा मन भगवान कृष्ण में उनकी लीला में उनके रूप में हमारा चित हमारा मन उसमें लग सकता है। तो इसी बात को भी श्री रुक्मणी देवी कहते हैं अपने परमे श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनताम ते निस्विषय कर्ण विवरे हरता अंग तापम। श्रुत्वा भगवान के बारे में सुनने से जो कौन है भगवान जो भुवन सुंदर सारे भुवन में सुंदर है परम सुंदर है जिनका कथा सुनने से हमारा मन अपने आप उसमें लग जाता है, इतना सुंदर है उनकी कथा उनका रूप उनका गुण। तो ऐसी भुवन सुंदर की कथा सुनने से निर्वेश्य कर्ण विवर है, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा हमारे कर्ण के द्वारा हमारे हृदय में जाएगा तब क्या होगा तो हरता अंग तापम। हमारा अंग का जो हमारी शरीर का हमारा आत्मा का जो हमारा मन का पीड़ा है वो हर जाएगा। हरता तापम हरता अंग तापम हमारे अंग की पीड़ा पूरी तरह से हर जाएगी मतलब नष्ट हो जाएगा। ऐसी हरि की कथा सुनने से ही हमारा ताप हर जाता है। जब तक हम हरि की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में जो है ताप वो हरने वाला नहीं है। और ताप हरने से क्या होगा तो रूपम दृश्या इसी सताम अखिल अर्थ लाभम। जब तक हमारा ताप हर जाएगा हमारा अंग का ताप नष्ट हो जाएगा तो वास्तविक हमारा अखिल जो आखिर जगत में लाभ है अर्थ लाभ है वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तविक मनुष्य का लाभ क्या है तत्वये अच्युतम अविशन्ति चित्तम अपत्रपम। तो जब उनका मनुष्य का लाभ परम लाभ है भगवान कृष्ण के चरणों में चित्त लगाना, जब भगवान कृष्ण के चरणों में चित्त लग जाएगा तब व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उनके लिए प्रोसेस बता रहे हैं, सबसे पहले उनको श्रवण करना चाहिए। श्रवण से ही रुक्मणी देवी का मन श्रवण से ही भगवान कृष्ण में लगा था। भगवान कृष्ण का उसने दर्शन नहीं किया था कभी, लेकिन उनके राज्य में जब नारद मुनि आते थे उनके पिता के पास तो भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे कि भगवान कृष्ण ने उस तरह गोकुल में लीला किया, उस तरह लीला किया, अभी द्वारका में लीला कर रहे हैं। इसी तरह भगवान के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, भगवान की दया के बारे में जब रुक्मिणी सुनती थी तो सुनने से उनका मन भगवान कृष्ण में लग गया। तो जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक उनका हृदय का जो चुनौती है, जो कलमश है, वो नष्ट नहीं होगा और साथ साथ में भगवान में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य है तो सुनना है, श्रवण करना है। नवदा भक्ति में जो प्रथम अंग वो भी श्रवण करना ही बताया है। तो श्रवण करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उनके बाद फिर बाद में स्मरण होता है, फिर बाद में चिंतन अर्चन जो भी हो, लेकिन उसके बाद प्रथम अंग है श्रवण करना। तो श्रवण करने से ही हमारे हृदय में जो अमंगल है वो नष्ट होता है और फिर बाद में हमारा मन भगवान कृष्ण में लगता है। और भगवान कृष्ण की जब हम कथा सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उनके कथा और कीर्तन से भगवान आकृष्ट होते हैं। वही एक भगवान को आकृष्ट करने का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। कथा से ही भगवान कृष्ण आकृष्ट होते हैं और उनके कथा का हमारे साथ साथ में हमारा भी मन भगवान कृष्ण के शरण में लगता है और साथ साथ में भगवान भी आकृष्ट कथा से ही होता है। कई प्रसंग ऐसे भागवत में है जो भगवान अपनी कथा से आकृष्ट हुए हैं। और उसमें भी जो ब्राह्मण पत्नी थी दसवें स्कंद में हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ब्राह्मण पत्नी भी उसी तरह भगवान के गुणगान सुनने से ही उनका मन आकृष्ट हो गया था। जब गोपिया गोकुल से मथुरा में जब दधी बेचने के लिए जाती थी तब भगवान कृष्ण का ही गुणगान करती थी। विक्रे तू कामा खिल गोप कन्या, विक्रे तू कामा खिल गोप कन्या, विक्रे तू कामा, जो कामना के साथ गोप कन्या, जो गोपी लोग मथुरा में दही बेचने के लिए जा रहे थे तो साथ साथ में वो क्या कहती थी, वसात मोह विषाद गोविंद दामोदर माधवी थी। तो गोविंद और दामोदर का गुणगान करते हुए उस काम में, उस मथुरा में गली में घूमती थी और साथ साथ में उनको कहना था दधी लो मक्खन लो, दधी लो मक्खन लो, लेकिन वो नहीं कहती थी, गोविंद दामोदर माधवी थी, गोविंद का ही गुणगान करती थी। वो अपना जो कामना थी, उनकी इच्छा थी को दधी व्यसना वो भूल जाती थी और भगवान कृष्ण के गुणगान में वो मस्त हो जाती थी। तो ऐसे भगवान कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते जो ब्राह्मण पत्नी भी थी वो इतनी आकृष्ट हो गई कि उनका चित्त भी रुक्मिणी देवी की तरह भगवान कृष्ण की कथा में लग गया। जब यज्ञ कर रहे थे तब भगवान कृष्ण और बलराम वन चारण गो चारण के लिए जब वन में गए तब सखा कहा कि हमें भूख की है, कुछ खाने का उपाय बता कीजिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि आप जाइए, जो बाजू में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाकर कुछ सामग्री लाकर कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कहा भगवान कृष्ण ने और गोप सखा गए वहां। तो गोप सखा ने कहा उस ब्राह्मणों से कि हम आए इधर गौशारण के और कृष्ण बलराम हमारे साथ है, तो आप कुछ, हमें भूख लगी है तो कुछ खाने का दीजिए। लेकिन ब्राह्मण तो स्वाहा स्वाहा में लगे हुए थे उसी में ही यज्ञ में, तो उस गोप सखाओं के ऊपर वो ध्यान नहीं दिए और उसी में वो लगे थे। कई बार गोप सखाओं ने की विनती की कि हमें भूख लगी, हमें कुछ सामग्री दी है, लेकिन वो ब्राह्मण सुने नहीं। फिर बाद में वापस आए वो सखाओ और भगवान कृष्ण और बलराम से कहा कि हमने आपके आपने जो कहा इसी तरह हम कहा, लेकिन उसने कुछ दिया नहीं। फिर भगवान ने कहा कि आप उनकी पत्नी के पास जाइए। और उनसे कहिए कि कृष्ण बदाम आए हैं इधर गोस्थान कर रहे हैं और उनके लिए कुछ सामग्री चाहिए। फिर गोप सखा उनके पास गए और कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनके लिए कुछ चाहिए, तो सुनते ही एकदम प्रसन्न हो गए और जितना जो यज्ञ में भोग लगाने के लिए जो सामग्री बनाई थी सब दे दिया और साथ में लेकर चल दी उस ब्राह्मण पत्नी, क्योंकि वो सुना था भगवान के गुणगान। उस गुणगान सुनने से वो आकृष्ट हो गई थी, लेकिन वो ब्राह्मण जो वेद अध्ययन करते थे ज्ञानी थे, तो भगवान कृष्ण की कथा में उनकी रुचि नहीं थी, तो उसको वो भगवान कृष्ण सामने होते हुए भी उसके पास होते हुए भी वो भगवान की इच्छा होते हुए भी वो नहीं कर उनकी संतुष्ट कर पाए, क्योंकि उसने सुना नहीं था भगवान के बारे में। और जो उनकी पत्नी थी उन्हें सुना था भगवान कृष्ण का गुण और कथा रूप और उनके कृपा का वर्णन, तो जब तक भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारा मन या हमारा चित भगवान में नहीं लग सकता। तो उनका भगवान में चित लगाने का एक ही उपाय है कि भगवान की कथा सुनना, श्रवण करना। तो श्रवण करने से हमारा साथ साथ हमारा कर्म वासना भी नष्ट होता है, हमारे हृदय में जो गंदगी है अभद्र है काम क्रोध लोभ मोह वो नष्ट होता है और साथ साथ में हमारा मन भी कृष्ण में लगता है। तो इस कृष्ण में मन लगाने के लिए और हमारी कर्म वासना को नष्ट करने के लिए कोई उपाय है तो वह है भगवान कृष्ण की कथा। तो इस श्लोक में यही खास करके बताए हैं, जैसे वो जो भगवान का यश इतना मधुर और मंगलमय है कि जो सुनने में कर्ण प्रिय अच्छा लगता है, आनंद आता है, और साथ साथ में हमारा जो अमंगल है, हमारा अभद्र है, हमारी कर्म वासना है, वो मूल रूप से हो डालता है, नष्ट हो जाता है कथा सुनने से। भगवान की कथा इतनी पवित्र और मधुर है, तो और इनके अलावा अगर कोई उपाय हम दूसरा करेंगे तो उससे हम सफल नहीं होंगे। हमारा हृदय की ग्रंथि को छेदन करने के लिए जो हम आसक्ति से घिरे हुए हैं, हमारे पुत्र परिवार अन्य अन्य सगा संबंधियों के साथ हमारा जो ग्रंथि लगा है, हमारी आसक्ति लगी हुई है, उस लगी आसक्ति को काटने के लिए कोई रास्ता है तो भगवान की कथा है। तो इस भगवान की कथा सुनने से ही हमें हमारा हृदय पवित्र कर सकते हैं और पवित्र हृदय के साथ हमारा चित्त भी भगवान कृष्ण के शरणों में लग सकता है। और जब हमारा चित्त भगवान कृष्ण के शरणों में लगेगा तब निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है जो कृष्ण भावना भावित होने का, सतत स्मर्तव्य विष्णु, तो सतत स्मरण तब हो सकता है जब उनके बारे में हम सुनते हैं। यही वेदों का सर्व विधि निषेध, सभी विधि निषेधों का यही सार है कि किस तरह हमारा मन भगवान कृष्ण में लगे। स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, विश्रमण कभी न हो, भगवान स्मरण बिना हमारा समय कभी न जाए, ऐसा उपाय कोई है तो वह भगवान की कथा। उस कथा सुनने से हमारा मन भगवान कृष्ण में लग सकता है। और जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तो उनके बारे में हम गुण नहीं सुनेंगे, उनका रूप का माधुर्य नहीं सुनेंगे, तब हमारा मन कैसे लगेगा? कोई प्रश्न ही नहीं है मन लगने में। जब ऐसे भगवान परम कृपालु है, भगवान कृष्ण की अद्भुत सौंदर्य है, उनका रूप है, तो इसके बारे में जब हम सुनेंगे तब हम निश्चित रूप से हमारा मन भगवान कृष्ण के शरण में लग सकता है। तो उसमें एक प्रभुपाद तात्पर्य में एक पांच बहुत सुंदर दिए हैं उस अनुवाद, और अनुवाद प्रारंभ करते हुए कि जब तक हमारा शुद्ध दिव्य कानों में हमारा कान है वो शुद्ध करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक हमारा कान शुद्ध नहीं होगा, इसी से प्रभुपाद अनुवाद शुरुआत करते हैं, शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की व्यवस्था से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। कान शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध करने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। जब तक हमारा कान शुद्ध नहीं होगा तब तक हम कथा सुनेंगे लेकिन हमारा मन भगवान कृष्ण में नहीं लगेगा, हमारी जो ग्रंथि है हमारे हृदय की वो ग्रंथि छेदन नहीं होगी। तो इस शुद्ध कान करने के लिए जप करना बहुत आवश्यकता है। इस कलयुग में कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, तो इस कलयुग में नाम रूप में कृष्ण भगवान अवतार धारण किए हैं और नाम में ही पूरी शक्ति दे दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, पूरी शक्ति अपने नाम में भगवान ने भर दी है। तो ऐसी पूरी शक्ति भगवान ने नाम ने भरी है, इस नाम को जब हम ग्रहण करेंगे, नाम जप करेंगे, तब हमारा कान शुद्ध होगा और जब हमारा कान शुद्ध होगा तब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय में जो अमंगल है वो नष्ट होगा और हमारा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगेगा। लेकिन कान शुद्ध करने के लिए नाम जप महत्वपूर्ण है और नाम की विधि भी प्रभुपाद ने बताया है। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में कहा है कि भगवान का नाम लेते समय भगवान की लीला का स्मरण होना चाहिए, लेकिन उससे पहले विधि प्रभुपाद ने कहा है कि नाम में ऐसा जप करना चाहिए ताकि हम सुन सके। नाम श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए, नाम जपते हुए हमें नाम सुनाई देना चाहिए। तो उस कीर्तन और स्मरण, जब कीर्तन और श्रवण दोनों हो सकता है, जब नाम इतनी एकदम धीरे से नहीं लेना चाहिए और एकदम जोर से भी नहीं, हम सुन सके उतनी मात्रा में जब हम नाम ग्रहण करेंगे तब हमारा नाम हमारा कान शुद्ध हो जाएगा। और इस तरह हमारा कान जब शुद्ध होगा और इस कान शुद्ध होने के बाद जब हम भागवत कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण और हमारा मंगल होगा। हमारे जो हृदय में अभद्र है वो नष्ट होगा। तो अभद्र नष्ट करने के लिए कान शुद्ध करना पड़ेगा और कान शुद्ध करने से ही भगवान कृष्ण में हमारी मति लगेगी और हमारी मति लगेगी तब हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है मनुष्य जन्म का वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्त करने का प्रभुपाद ने जो उपाय बताया है, जो रास्ता दिया है, तो हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम नाम जप करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे और साथ साथ प्रभुपाद ने कहा इसी तात्पर्य में बताया है कि भगवत गीता का संदेश भी ग्रहण करना चाहिए, उपदेश भी ग्रहण करना चाहिए जो भगवान ने कहा है। वो जब भगवान का उपदेश भगवत गीता द्वारा जो दिया है इस मानव समाज को, उसको ग्रहण करना चाहिए, फिर बाद में भागवतम सुनना चाहिए। फिर भागवतम तब सुनेंगे तब हमारे हृदय में जो अमंगल है वो नष्ट होगा और भगवान में हमारा मन लगेगा। तो इसी तरह इस नवमा स्कंद समाप्त होने जा रहा है और पांच श्लोक बाकी है। पांच श्लोक के बाद फिर बाद में दसवां स्कंद शुरू होगा और दसवां स्कंद शुरू होते ही पूर्ण रूप से जो साक्षात भगवान कृष्ण है, जो इस भौतिक जगत में अवतार धारण करते जीवों का मंगल करने के लिए, जो असुरों का नाश करने के लिए और साधु की रक्षा करने के लिए बाह्य दौर से वास्तविक तो भक्तों का आनंद देने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। तो इसी प्रसंग को इस दसम स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है तो सभी भक्त ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए और ध्यानपूर्वक श्रवण करने से ही हमारा मन भगवान में लगेगा। इसी प्रार्थना से हम प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इतनी शक्ति दे कि हमारा मन भगवान कृष्ण में जो दसम स्कंद में प्रारंभ होने जा रहा है उसमें लगे और हम भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से कथा कीर्तन कर सके और कथा कीर्तन करके हमारा चित्त भगवान चरणों में लगा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वनमाली प्रभु से पूछ सकते हैं। सरल श्लोक था, कोई प्रश्न तो होगा नहीं इसमें, अगर कोई है तो वनमाली प्रभु जवाब दे। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा, अगर कोई टूटी रह गई तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय। गौर प्रेम क्रांति लाने के लिए भागवत ही है।